आजकल एक दो चीज़ें हमारी चल रही हैं, तो उसमें कुछ साथियों ने कुछ ऐसे ही कमेंट दिए कि जब आप पढ़ाती हैं तो उस वक्त ज़िंदगी में सुनने वालों को सबसे कीमती चीज़ दीन और दीन का काम लगता है। तो ये कभी नहीं हो सकता कि जो आपसे पढ़ेगा वो उस्ताद ना बने। किसी ने कहा आप एक पारा पढ़ा दें उसके बाद लोगों का दिल करता है हम भी पढ़ाना शुरू हो जाएं। किसी एक ने हमें कमेंट दिया कि आप नूरुल कुरान की वेबसाइट का नाम बदल दें और उस पे अपने गोल्स में लिखिए वी प्रोड्यूस टीचर्स। क्यों? ये सारे कमेंट्स किस पे चल रहे थे कि आपके पढ़ाने के अंदर ही ये बात पड़ी है कि तुम भी शुरू हो जाओ, यानी ठंडे होके नहीं बैठ सकते। और बात भी यही है, देखिए वह हर रिजिल मोमिनीन अलल किताल था ना, अल्लाह के नबी को तो जो हुक्म था वो तो किताल का था, वो तो बाद में हुआ। आपका मेरा आज काम क्या है? अपने घर के छोटे बच्चे से शुरू करके ख़ानदान, गली, मोहल्ला, मुआशरा अल्लाह के नाम के लिए, अल्लाह से जोड़ने के लिए निकल जाइए। उसके बाद फिर कोई फ़ायदा हो ना हो आपको क्या और मुझे क्या, अल्लाह जाने बंदे जाने, तो हमेशा काम कीजिए अल्लाह की रज़ा के लिए। इखलास से भरे हुए लोग काम करते हैं और लोग पूछते हैं किस तरह ग्रो हो रहा है इतनी जल्दी, ये क्या हो रहा है, वो क्या हो रहा है, क्या है, कौन स्पॉन्सर, कैसे, किसको? तो मैं उनको कहती हूँ कि ये सारा काम वो लोग करते हैं जिनको तारीफ़ भी नहीं चाहिए, जिनको एप्रिसिएशन तक नहीं चाहिए कि आप हमारे गुण गाएं आकर स्टेज पे कि ये काम उसने किया और मेड बाय दिस और प्रोड्यूस्ड बाय दिस, और लिख लीजिए आखिर में वही बचेगा जो इसको ऑनर समझ लेगा। उनको तो परवाह नहीं, पैसे से तो लोगों को ख़रीद सकते हैं लेकिन जज्बों को नहीं ख़रीद सकते। तो ये एक ज़ील है, एक मिशनरी, और मैं कहती हूँ कि ये अल्लाह की मदद है। जब बंदा अकेला चलता है अल्लाह लोग मिलाता है, रास्ते बनते जाते हैं। किस तरीके से सहाबे कराम की तरह आज भी दीन के नाम पे काम करने के लिए लोग तैयार हैं। आज इत्तफाक मेरे पास ईमेल में एक फॉरवर्डिंग है तो वॉलंटियर फॉर्म्स आता है, जो भी फॉर्म आता है वो मैंने अपने शौक़ की खातिर लगवाया हुआ है, दुआएं भी निकलती हैं और अच्छा भी लगता है। तो मैंने वॉलंटियर फॉर्म का जब नंबर देखा तो मेरा दिल करे कि मैं सजदे में चली जाऊँ। और साथ ही कहते हैं कि इतने वॉलंटियर फॉर्म हैं और जिनको काम नहीं मिलता वो नाराज़ रहते हैं हमसे, आप जवाब नहीं देते, रिस्पांस नहीं देते, क्योंकि वॉलंटियर फॉर्म तो एक पहला कदम है, 10 कदम तो उसके बाद हैं किसी जगह पहुंचाने पे। कैसे हम किसी को इतनी बड़ी जिम्मेदारी दें जबकि उससे बात ना हो, और हर चीज़ में वक्त लगता है। तो साहब कराम की ये बातें पढ़कर हकीकत में यही बात समझ आ गई कि अल्लाह ताला ने इनको वो दिया, और वो क्या था, अल्लाह की रज़ा और उसकी खुशनदी और उनके दिलों की ठंडक। और अल्लाह ताला फरमाते हैं इनके सब्र का बदला जन्नत है, दीबा हरीर है जिसमें वो मसहरियों पर टेक लगाए बैठेंगे जहाँ धूप और जाड़े का एहसास तक ना होगा। इसके दरख्त इन पर साया फिगन होंगे, इनके फल नज़दीक ही लटके होंगे, सोने चांदी और शीशे के जाम मुनासिब अंदाज में भर भर कर इनको मशरूब पिलाए जाएंगे। अल्लाह हमें भी किसी कोने में डाल दे, हमसे भी कुछ ले ले ऐसा काम जो हमारे जन्नत में जाने का जरिया बन जाए। तो सहाबा की कैफियत क्या थी? अल्लाह ने उनको शुरू की कुर्बानियों के बाद क़यामत तक के लिए इनामात से नवाज दिया। क्या थे उनके ऊपर अल्लाह के इनाम? नंबर एक, वो अल्लाह और उसके रसूल की मुकम्मल इताअत करते थे। लिख लें, अगर आप और मैं चाहते हैं ना कि सिरात अल्लज़ीना अनअमता अलैहिम, तो इनाम वाले बनने के लिए शर्त है कि आप अल्लाह और उसके रसूल की मुकम्मल इताअत करें। अधूरी नहीं, जुज़वी नहीं, कभी कभी नहीं, मोटी पतली नहीं, एक डगर पे सीधी गाड़ी चलती जाए और इंसान बस अल्लाह के आगे सर डाल दे। फिर दूसरी बात है कि आला अखलाक और सिद्क के पैकर थे वो। अखलाक बड़ा आला था और सिद्क बहुत प्यारा था। चंद दिन पहले के किसी शायद मेरा वीकेंड सेशन में मैंने ये जुमला बोला था कि दुनिया इस बात की गवाह है कि स्किल्ड लोगों ने उतनी कामयाबी नहीं की जितनी बाअखलाक लोगों ने कामयाबी इख्तियार की है। मास्टर्स किए हुए बेचारे सड़कों पर रुल रहे हैं लेकिन बाअखलाक दुकानदार छोटी सी रेहड़ी से बड़ी शॉप पे पहुंच गया। वो कहते हैं जी शाह साहब का अखलाक बड़ा अच्छा है, वो जी फलां साहब जो है वो मिलते बड़े प्यार से। तो दीन के काम में भी अखलाक बड़ी बात है, लोगों को लोग समझिए, इंसान समझिए और अपनी बात पे सच्चे रहे। सिद्क के पैकर थे सहाबा। फिर आप देखिए सहाबा पे इनाम थे कि वो घर, माल और अयाल की हिजरतें करने को तैयार बैठे थे। जैसे आप देखिए कि नीलामी होती है ना, तो उसके और किसी और चीज़ को ख़रीदने का एक फ़र्क ऑक्शन होती है ना, मैंने किसी से एक मौके पे पूछा था कि मतलब अक्सर ही सुनती थी और हमेशा स्कूल के ही लिए चीज़ें लेने देने में ये लफ्ज़ आता है, तो मैंने फ़र्क पूछा था कि वो कहते थे 100 की चीज़ 20 की मिल जाती है कभी, तो मैंने कहा फिर सभी क्यों नहीं ले लेते, तो उन्होंने कहा कि उसको लेने के लिए जाते हैं ना तो जेब में पैसा रख कर लेकर जाते हैं क्योंकि वो कैश होता है। क्यों? इसलिए कि घर से बंदा ले के निकलता है ना, अल्लाह ये मेरा घर तो मेरे पास है, ये मेरा माल, ये मेरे याल, ये घर, अल्लाह मैं तो इनसे बिल्कुल एक सेकंड में दस्तबरदार होने को तैयार हूँ, तो इसको कबूल कर ले। और आप देख लीजिए, अबू दहदा या उम्मे दहदा उखरुजी, ए दहदा की माँ निकला निकला, मैंने ये बाग अपने रब को दे दिया। हम अपने दामन और अपने गिरेबान में तो झांकते नहीं और सोचते रहते हैं कि ये काम कैसे होगा और वो कैसे होगा, तो सहाबा ले ले के फिरते थे कि कोई हमसे ले लो, हम छुपा के बचा के परेशान हो के फिरें और फिर कहें कि सिरात अल्लज़ीन अनअमत अलैहिम, तो ये नहीं हो सकता। और सबसे बड़ी बात, जान और माल से जिहाद, जान बंदे को बड़ी प्यारी होती, कहते सब कुछ ले लो मेरी जान छोड़ दो, अल्लाह ना करे कोई चोर घर में आए तो ये जुमला घर वाले बोलते हैं। साहबा ने जान हथेली पे रख के पेश की, और अभी पढ़ा है आपने कि एक तो कलमा इसलिए पढ़ता है कि मैं शहीद हो जाऊं, तो ये हैं वो इनाम वाले लोग। और इनाम वाले लोग कौन होते हैं, किसको याद है? आप लोगों ने रुहुल कुरान की सूरत फातिहा पढ़ी कभी, सुनी? अनम उसमें बताया था मैंने, अनाम नोम से है, नून ऐन मीम। नेम कहते नरमी को, ये जो ऊँट चलता है नरम नरम पाँव होते हैं ना, तो इनाम करना किसी पर क्या है कि उसके लिए वो काम आसान कर दिया। आपके लिए कोई नेकी करना आसान हो जाता है, आप पे ये अल्लाह का इनाम है। जिन पे मुश्किल है वो अल्लाह के इस इनाम से मुश्किल है। आप देख लीजिए, ज़रा सी आप नीयत तो करें, किसी नेकी की आसान नहीं होती, और जब तक सोचों में पड़े रहते हैं तो कदम ही नहीं, मन मन के हो जाते हैं। तो अनमत अलैहिम वो हैं जिन पर नेकियां आसान हो गई, जिनके लिए हिजरतें आसान, कुर्बानियां आसान, और पता नहीं क्या कुछ। और आप देखिए, इतनी पर्सनल बातें होती हैं, बंदा किसी के सामने करता हुआ भी बुरा लगता है, लेकिन सारा दिन रात अल्लाह ताला के साथ बातें इंसान की चलती हैं, क्या करना है, मेरे बाद क्या होगा, मेरे आगे क्या होगा, तो इंसान अल्लाह ताला से बातें करता है। और ये बातें किसी को बताएं तो इंसान हल्का लगता है, अल्लाह को बताएं तो इंसान को अपने अंदर एक ताकत महसूस होती है। तो हमेशा अपने बाद के लिए भी सोचिए कि मेरे बाद मेरी चीज़ों का क्या होगा, मेरी औलाद, मेरी फलां चीज़ें, मेरी जायदाद, मेरे एसेट्स, मेरी रुकी हुई चीज़ें, ये सब किधर जानी है। और जैसे लोग अपने बच्चों के मुस्तकबिल की फ़िक्रें करते हैं, आप अल्लाह के दीन की फ़िक्रें करें। तो जब आप और मैं खड़े हो जाते हैं, बाकी काम अल्लाह कर देते हैं। और सूरत बैजीन आयत नंबर 7 to 8, इन्नल्लज़ीन आमनू वामिलुस्सालिहाती उलाइकहुम खैरुल बरिया, जज़ाउहुम इंदा रब्बिहिम जन्नात जन्नातु अदनिन तजरी मिन तहतिहल अन्हारु खालिदीन फीहा अबदा रदियल्लाहु अन्हुम व रदुअन ज़ालिक लिमन खशिया रब्बा। ये है जुमला आखिरी सुनने वाला, अल्लाह उनसे राज़ी हो गया और वो उससे राज़ी हो गए, और ये सिला उसके लिए जो अपने परवरदिगार से डरता है। अल्लाह में सहाबा की तरह ऐसा ही बना दे। और अगला टॉपिक भी बहुत ही प्यारा है, हर हाल में तस्लीम और रज़ा, हर चीज़ में राज़ी रहिए। बनू अब्स का एक शख्स अपने गुमशुदा ऊँटों की तलाश में निकला, 3 दिन तक इसे ढूंढा। ये शख्स मालदार था, माल, ऊंट, गाय, बैल, बकरी और लड़के लड़कियां अल्लाह ने इसको दी थी, यानी सब नेमतें दी थी, जिसको अमूमन लोग दुनिया में नेमत कहते हैं। घर बड़ा कुशादा था, बनू अब्स के दयार में सैलाब के रास्ते में मकान वाक़े था। ये लोग ऐशो आराम और अमन और अमान में रहते थे। इसके माँ बाप या औलाद को इसका वहमो गुमान भी ना था कि हादसात और मसाइब भी इन पर टूट सकते हैं। यानी एक वक्त था सब कुछ था, और आने वाले वक्त में अब देखिएगा कुछ भी नहीं रहेगा। शायर कहते हैं कि रात में अव्वल वक्त खुशी खुशी सो जाने वाले, हादसात सहर के वक्त भी आ जाया करते हैं। सूरत आराफ में अल्लाह ताला फरमाते हैं ना कि वो सोए ऐसे हाल में कि सुबह सुबह उन पे अजाब आ गया। तो ये दुनिया की माल, दुनिया की चीज़ें किसी वक्त भी जा सकती हैं। घर के लोग छोटे बड़े सब सो गए, मालो असबाब सब मौजूद। बाप बाहर निकला गुमशुदा ऊँट की तलाश में, रात में ऐसा शदीद सैलाब आया जिसने चट्टानों को मट्टी की तरह उठा लिया, तमाम घर तबाह कर डाले, माल और घर बार सब बर्बाद हुए, सब मरखब गए, गोया के वो कभी बसते ही ना थे। 3 दिन बाद बाप वादी में वापस आया तो कुछ भी ना था, ना कोई जिंदा, ना बोलने वाला, ना दोस्त, ना महबूब, बिल्कुल चटियल मैदान। या अल्लाह, ये क्या आफत आ गई। बीवी, बच्चे, बेटा, बेटी, ऊंट, घोड़े, गायें और बकरी, मालो जर, कपड़े लत्ते, सब क्या हुए। इस पर मजीद आफत ये हुई कि एक ऊंट भागा, जिसे इसने पकड़ने की कोशिश की तो ऊंट ने चेहरे पर लात मार दी, जिससे इसकी आंखें भी चली गईं। बेचारा सहरा में चिल्लाने लगा कि कोई आदमी इसे पकड़ कर किसी ठिकाने पर पहुंचा दे। एक दूसरे अराबी ने इसे देखा और पकड़ कर दमश्क में खलीफा वलीद बिन अब्दुल मलक के पास ले गया और इसे सारी बात बताई। खलीफा ने पूछा, तुम कैसे हो। अब ज़रा सुनिए उसके जुमले। हमें तो उस पर रहम आ रहा है ना, तरस आ रहा है बेचारा। उसने कहा, अल्लाह ने जो किया मैं इस पर राज़ी हूँ, अल्लाह ने जो किया मैं इस पर राज़ी हूँ। 3 दफ़ा अपने अपने हालात पे कही है। अल्लाह न करे चोट पड़े, अल्लाह न करे सदमा पड़े, अल्लाह न करे बीमारी पड़े। 3 दफ़ा बावाज़े बुलंद कीजिए, रदी तो बिल्लाही रब्बा, अल्लाह तूने जो किया मैं उस पर राज़ी हूँ। फिर देखिए दिल को सुकून कितना आता है। कितनी बड़ी बात थी जो इसने कह दी, ऐसी बात जिसे मवाहिद यानी अल्लाह को एक मानने वाला मुसलमान ही कह सकता है। वो साइलों और इबरत हासिल करने वालों के लिए नमूना है। वजह अल्लाह से रजामंदी, और इसके बरक्स जो राज़ी नहीं होता, मुकद्दर को नहीं मानता, वो क्या कर सकता है। ज़मीन में खंदक या आसमान में सीढ़ी लगा ले, और अगर चाहे तो कोई और जरिया बनाकर आसमान को चला जाए, फिर इसे काट दे, फिर देखे कि इसकी तदबीर से इसका गुस्सा ख़त्म हो जाएगा। तो क्या पता चला कि आपकी मेरी औकात ही इतनी है कि कबूल कर लें। मैं तो अक्सर खुद को कहती हूँ, हमारी औकात इतनी है, इससे ज़्यादा तो हमें कुछ करना नहीं। तो हर हाल में तस्लीम और रज़ा को अपना शुआर बनाइए, इसी के ऊपर अपने आप को रखिए, और खुशी गम सब अल्लाह की तरफ से है। क्या करें, चंद चीज़ें नोट कर लें जो आपने 20 बार पहले भी नोट की हैं, शायद अब फिर करें तो दिल को यकीन आए। खुशी मिले तो खुशखबरी पर शुक्र अदा कीजिए, अल्हम्दुलिल्लाह कहिए। गम पहुँचे, मुसीबत आई, सब्र कीजिए। गुनाह हो गया तो नदामत और इस्तग़फार कीजिए, और गुस्सा आ गया या किसी ने दिला दिया तो बुर्दबार रहिए, बी हम्बल। और फैसले में अदलो इंसाफ कीजिए, फैसले करें तो इंसाफ और अदल के कीजिए, और आप देखेंगे कि इसके बाद आपको कितना सुकून मिलेगा। और आप फिर कहिए कि अल्लाह ताला, इससे ज़्यादा मैं कुछ और नहीं कर सकता। छोटा सा एक ज़हनी वक्फ़ा लें और चंद जुमले सुनिए। अबू अली बिन शिबल ने कहा, जब तुम्हें फ़िक्र लाहक हो तो उम्मीदों और आरज़ुओं से काम लो, कि जन्नत की नेमतें भी तो वादे ही हैं। मायूसी से बचाने के लिए उम्मीद की ढाल अपनाओ, यहाँ तक कि वक्त खुद मरहम बन जाए। दोस्तों से अपना गम छुपाओ, क्योंकि इसमें हासिदीन और दुश्मन हैं। हादसात का खटका न लगा रहे, क्योंकि इससे तो आदमी मरने से पहले ही मर जाता है। रंजो खुशी दोनों ही पायदार नहीं है, आनी जानी चीज़ है। नफ्स इंसान की अकल को मुगालते में डाल दिया करता है। अगर ऐसा ना हो तो बेदार मगज़ लोगों को ज़िंदगी अच्छी ही ना लगे। तो फिर क्या पता चला कि बस अल्लाह से राज़ी रहिए, जो हो रहा है होने दीजिए। परेशानी की हालत में भी अच्छे वक्त की उम्मीद रखिए, दिल मज़बूत और हौसले बुलंद रखें। दोस्तों से भी अपना गम छुपाएं, सिर्फ अल्लाह को अपना महरम राज बनाएं। खुशी और गम आनी जानी चीज़ है, इसका यकीन कर लीजिए। सब्र और इस्तकामत से हर मुसीबत टल जाती है, और जब आप इसके ऊपर गौर व फिक्र करते हैं ना, तो फिर आपको पता चलता है कि मैं कितने पानी में हूँ। आखिरी टॉपिक करेंगे आज की इस नशिस्त का, और वो क्या है, फैसला करना है। किस बात का, बहुत बड़ा फैसला। और वो फैसला क्या है, अल्लाह ताला फरमाते हैं, फ़ाइज़ा अज़मत फ़तवक्कल अलल्लाह, सूरह आल इमरान 159। और ग़ज़वे उहद के तनाजर में यह आयत है कि जब आप कोई फ़ैसला कर लें तो फिर अल्लाह पर भरोसा करके उस पर जमिए, और बेशक अल्लाह ताला तवक्कुल करने वालों को पसंद करता है। 159 यानी इसी आयत का हिस्सा है। फैसला करते वक्त हम में से बहुत से लोग मुस्तरिब हो जाते हैं, इन्हें कुलक, हैरत व शक और शुबा पेश आता है, परेशानी होती और हमेशा सर चकराता है। इसलिए इंसान पर यह लाजिम है कि वो मशवरा ले, और अल्लाह से इस्तखारा करे और सोचे कम। जब कोई इरादा पक्का हो जाए और दिल इस पर जम जाए तो बिला तरद्दत इकदाम कर डाले। अब इस्तखारा और मशवरा का वक्त ख़त्म, अब अज़्म करे, तवक्कुल से काम ले, यकीन और मजबूती हो ताकि तरद्दुद और इस्तराब की ज़िंदगी ख़त्म हो जाए। आप देखिए कि डिसीजन मेकिंग एक बहुत बड़ा लोगों का प्रॉब्लम होता है। इस पे भी एक सेशन हमने रेडी रखा हुआ है, किसी भी वक्त सामने आ जाएगा कि डिसीजन मैनेजमेंट नहीं आती। हम दिन में आधा वक्त सिर्फ इसलिए भी परेशान होते हैं, इवन हमें तो ये नहीं समझ आती आज पकाएं क्या। चार दफ़ा सोचते, खोलते फ्रिज बंद, चलो अब नहीं वो नहीं। तो जब इरादे पक्के होते हैं ना तो दिल में एक सुकून आता है, फिर आप बस उसके लिए कोशिश शुरू कर दें। और उहद के दिन आपने लोगों से मशवरा किया, लोगों ने बाहर निकलकर मुकाबले की राय दी, तब आपने ज़िरह पहनी, तलवार हाथ में ली। लोगों ने कहा, या रसूलुल्लाह, कहीं हमने तो आपको मजबूर नहीं कर दिया। कभी कभी ऐसा फील होता है ना कि शायद हमारे कहने पे आप आ गए, क्योंकि आपका इरादा तो कुछ और था, लेकिन आप अपने साथियों को बड़ी इज्जत देते थे और उन पे ट्रस्ट भी बहुत करते थे, जो आप कहते हैं वो ठीक होगा, और एक अच्छे लीडर की यही खूबी है। खैर, ऐसा ही है तो फिर मदीना में ही ठहरिए। आपको याद होगा कि अल्लाह के नबी की राय क्या थी, मदीना में रहकर मुकाबला किया जाए। सब साथियों ने कहा वो नहीं तो ठीक है। अब देखिए बाद में नुकसान हुआ तो अल्लाह के नबी ने ताना तो कोई नहीं दिया, ये तुमने कहा था ना इसलिए ये सब हुआ है। तो ये टीम को जोड़ने की खूबसूरत बातें। फरमाया, कोई नबी जब ज़िरह पहन लेता है तो इसे उतारना ज़ेबा नहीं जब तक अल्लाह इसके और दुश्मनों के बीच फैसला ना कर दे, फिर आप निकल पड़े। यहाँ पहुंचकर मसले में तरद्दुद की गुंजाइश नहीं, आप अज़्मे मुसम्मम यानी पक्का इरादा और निफास की ज़रूरत है। जुर्रत और शुजात और क़ियादत का तकाज़ा फ़ैसला लेना है, यानी लीडरशिप क्वालिटी यह है कि आप फ़ैसला लीजिए। आप में इतनी समझबूझ और इतनी रिस्क मैनेजमेंट होनी चाहिए कि हम फैसला कर चुके हैं, अब आगे अल्लाह मदद करेगा। बदर के मौके पर भी आपने बहुकम बशाविर हम फिल अमरी वामर हम शूरा बीना हम, ये भी आगे आता है सूरह शूरा में, यानी आप सहाबा से मशवरे करते थे। फिर जब एक फैसला हो गया तो आपने बेखटके इकदाम कर दिया। तरद्दुद का मतलब है फसाद राय, हिम्मत की कमी, इरादे का तजलजुल और कोशिश का बिखराव और सफ़र की नाकामी। इलाज मर्ज़ है, यानी ज़्यादा ना सोचें, जितना सोचेंगे उतना ही कमज़ोर पड़ेंगे। इसकी दवा तो बस अज़्म, जज़्म और सुबात है। कई लोगों को ये कहते हैं कि मैं जानता हूँ, जो छोटे छोटे मामलात में भी कभी आगे बढ़ते कभी पीछे हटते हैं, यानी करूँ कि ना करूँ, गू मगू की कैफियत, मुजब्जब, इनमें सिर्फ शक और इस्तराब की रुख काम करती है। यानी कभी किसी अच्छे काम को दिल भी चाह रहा और आप ना करें ना, तो मान लीजिए कि यहाँ शक है या इस्तराब है। अपने बारे में भी, इर्द गिर्द के लोगों के बारे में भी, उन्होंने अपनी रूह और जहन को नाकामी और इंतशार का शिकार हो जाने दिया। वाक़े के मुताले, मसले पर गौर और अहले राय के मशवरे और रब्बुस समावाती वल अर्ज़ से इस्तखारे के बाद, यहाँ देखिए पूरी तरतीब है। आपको कोई फ़ैसला करना है, पहले आप ख़ुद सोचें उस पर, उस मसले पर गौर करें, फिर कोई अक्लमंद समझदार यानी बड़े ज़ीरक अहले राय लोग हैं उनसे मशवरा कीजिए, जो मुखलिस भी हों और समझदार भी हों, और उसके बाद फिर इस्तखारा कीजिए। इस्तखारा आखिर में होता है, उसके बाद फिर इकदाम कीजिए, पीछे ना हटें। जो चीज़ भी सामने आए इसे फ़ौरन नाफिज करें, इसमें देर ना करें। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ ने फितने इर्तदाद यानी जब लोगों ने ज़कात का इनकार कर दिया और मुर्तद हो गए, अल्लाह के नबी के फ़ौरन बाद की बातें हैं, तो उस पर लोगों से सलाह और मशवरा किया। सबकी राय ये थी कि क़िताल ना किया जाए, रिस्क नहीं लेना चाह रहे थे कि नया नया सदमा सहा हुआ, इतनी बड़ी चोट लग गई, पता नहीं क्या होगा, नहीं अभी सबको ऐसे ही रहने दें। लेकिन हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ को इस पर शरे सदर हो चुका था कि क़िताल के ज़रिए इस्लाम को तकवीयत मिलेगी, फितने की जड़ कटेगी और दीन से जो लोग निकल रहे हैं इनकी तादीब होगी। तादीब, अदब सिखाना। अल्लाह के नूर ने इन्हें दिखाया कि क़िताल बेहतर है, लिहाजा उन्होंने पुख्ता इरादा कर लिया और फरमाया, बखुदा जो नमाज और ज़कात में फ़र्क कर रहे हैं इनसे ज़रूर जंग करूँगा। ज़रा सा अबू बकर की जगह ख़ुद को रख कर सोचे, पूरा सहाबा का गिरोह एक तरफ और अबू बकर एक तरफ, और यही लश्कर उसामा के मौके पर भी होता है। तो याद रखिए, लीडर्स को बहुत ज़्यादा रिस्क लेना पड़ता है। जब आप अल्लाह से मशवरा कर चुके, पूरी टीम भी ना उस बाकी हिकमत को समझे, तो कभी कभी आपको एक स्टैंड लेना पड़ता है। और फिर उसके फ़ायदे कितने दिखे, क्योंकि ज़कात ना देने वाला मुसलमान तो रहा ही ना अबू बकर सिद्दीक़ की निगाह में। हज़रत उमर कहते हैं, मुझे एहसास हो गया कि अबू बकर सिद्दीक को जिस पर शरह सदर हो गया है वही बेहतर है। कितना खूबसूरत टीम वर्क था, अबू बकर का मिजाज और उमर का कोई और। हज़रत अबू बकर के इस फैसले पे उमर नेगेटिव बातें करते, छुप छुप के कोनों में कहते, उसको सुना उसको सुना। ये अबू बकर को पता नहीं क्या इतनी मुश्किल बातें कर रहे हैं, मैं कैसे बताऊँ, मेरी बात कोई समझता नहीं, ऐसा नहीं करना। नहीं, उमर का जुमला सुन लीजिए कि जब अबू बकर का दिल मुतमईन है तो मैं क्यों बीच में परेशान हूँ। और चुनाचे ये फैसला हुआ और इसके मुताबिक इकदाम किए गए। हज़रत अबू बकर की राय ही मुबारक और सही निकली, इस्लाम को फतह नसीब हुई। वरना आपको पता क्या होता, 1 साल के अंदर अल्लाह के नबी के बाद पूरा काफिला बिखर जाता। और ये अल्लाह हमें समझ दे कि ये चीज़ें किस मौके पे कहाँ समझने की हैं। हम कब तक मुस्तरिब रहेंगे, अपनी जगहों में चकराएंगे और फैसला लेने में तरद्दुद का शिकार रहेंगे। यानी हम जब तक फैसला नहीं करते हम तरद्दुद का शिकार रहते हैं। शायर कहते हैं कि अगर राय रखते हो तो अजीमत वाली रखो, तजब्जुब और तरद्दुद वाली राय बेहतर नहीं होती। वो कहते हैं ना, थाली के बैंगन, यानी इधर से उधर उधर से रहने वाले लोग कभी लीडर नहीं बन सकते, तो क्या करें, जम जाएं। इसके बरक्स मुनाफिकीन का मिजाज इस तरह का होता है कि बहस और तकरार और नज़रे सानी वगैरह की बातें कर करके असल स्कीम ही रायगां कर देते हैं। इसको हाईलाइट करें। कुछ लोग कहते हैं, नहीं अभी और सोच लें, ज़रा अभी और सोचते हैं। ये मुनाफिकीन का मिजाज है, बहसें करेंगे, तकरार, बार बार तकरार, कहते बार बार किसी बात को कहे, अच्छा चले एक और देख ले, एक और नज़र सानी कर लें, तो जो असल प्लान है वही पीछे। आप इतनी दफ़ा रिव्यू कराएं कि चीज़ का वक्त ही ख़त्म हो जाए, क्या फ़ायदा उस चीज़ का बाद में। ये मुराद है। और अल्लाह ने सच कहा कि अगर ये तुम्हारे साथ निकलते भी तो तुम्हारी मुश्किल में इजाफा करते और तुम्हारे बीच फितने की बातें डालते। सूरह तौबा आयत 47 है। ये लोग हैं जिन्होंने पीछे बैठकर अपने भाइयों के बारे में बातें बनाई, खुद तो करना नहीं था, अब कुछ ने किया तो बैठकर घर में उनके खिलाफ बातें कर रहे हैं। क्या कि अगर हमारी इताअत करते तो कत्ल ना किए जाते। कह दीजिए तुम अपने आप से मौत को टाल दो अगर तुम सच्चे हो। यानी मैदान जंग में ही सिर्फ मौत आती है तो फिर घरों में क्यों, बिस्तरों पे क्यों बीमार हो, और क्यों फिर तुम मौत से अपने आप को नहीं बचाते। इस किस्म के लोग हमेशा ली तो लाल, यानी ये एक जुमला है उर्दू का मुहावरा है, करूं के ना करूं, करूं के ना करूं, इसी में पड़े रहते हैं। और अगर मगर, इफ्स एंड बट्स, इफ्स एंड बट, इफ आई डू दिस, इफ आई डू दिस, और ली तो लाल को आप लिख लीजिए प्रोज एंड कॉन। चले प्रोज एंड कॉन देख लें, चले लोगों से पूछ लें, जरा राय ले, चले फीलर ले लेते हैं, चले टेस्टर करते, नेवर। और ये एक कदम आगे बढ़ाते हैं और एक कदम पीछे हटाते हैं और इसी के बीच लटकते रहते हैं, ना इनमें हैं ना उनमें। सूरत निसा 143 पारे कांड जहाँ होता है वहाँ अल्लाह ने मुनाफिकीन की बात कर दी। मज़बज़बीन बैन ज़ालिका ला इलाहा उलाई व ला इलाहा उलाई, ये तो दोगलापन है। ऐसे बंदे याद रखिए पहुँचते कहीं नहीं एंड पे, कभी हमारे साथ कभी दुश्मन के साथ, एक बार यहाँ एक बार वहाँ, जैसा कि हदीस में इनको एक बकरी जो दो रेवड़ों के बीच में है कहा गया। मुनाफिकीन की मिसाल अल्लाह के नबी ने ऐसी बकरी से दी जो दो रेवड़ों के बीच में जुफ्ती की तलाश में भागती रहती है। खैर, कहा गया मुश्किलात के वक्त कहेंगे, अगर हम जानते कि लड़ाई होगी तो ज़रूर तुम्हारे साथ चलते। हालांकि वो अपने आप से और अल्लाह से झूठ बोल रहे थे। ये बुहरानी कैफियत, बुहरानी क्या, जब इस्लाम पे कोई बुहरान आता है, कोई जवाल, कोई डाउनफॉल, कोई नुकसान का ख़तरा है तो खिसक जाते हैं। ये बुहरानी हालत में खिसक जाते और खुशहाली में चले आते हैं, यानी माले गनीमत जब बढ़ता है, और कहते हैं हमें जाने दीजिए, हमें ना आजमाइए। जुद बिन कैस का ये जुमला आयत 49 है सूरह तौबा की, कि मैं नहीं चाह सकता, हमें ना तफ्तनी। और इनका फैसला तजब्जुब और मायूसी का था। अहजाब के मौके पर उन्होंने कहा, हमारे घर तो गैर महफूज हैं, हालांकि वो महफूज थे। देखिए अल्लाह की बातें ना, आप मैं इसके बारे में एक लफ्ज़ नहीं कह सकते किसी के बारे में, ये हर बंदा अपने हाल को जानता है। और ये सूरत अहजाब आयत 13 है, यानी सिर्फ इसलिए गज़वे खंदक में कुछ लोग नहीं निकले थे क्योंकि नहीं निकलना था, डर था, इतने दुश्मन आ रहे हैं, और बहाना क्या था कि हमारे घर खाली हैं और दुश्मन का ख़तरा है और ये वो। इनकी ये सब कारस्तानियाँ वाजिब से बचने, यानी वो जंग जो अल्लाह ने वाजिब कर दी थी उसे बचना चाह रहे थे, और वाज़े हक़ से खिसक लेने के बायस थी। अगला टॉपिक प्यारा बड़ा, टाइम ना ख़त्म हुआ था तो मैं इसको भी पढ़ देती, लेकिन हम आज यहाँ रुकेंगे। क्या सीखा, फ़ैसला कीजिए, आज एक फ़ैसला कर लें। एक तरफ हो जाएं, जक्को तक्का छोड़ दीजिए। और आप खुद देखते हैं, जिस दिन आप किसी काम का फैसला कर लेते हैं, आप मुतमईन होके सोते हैं। कभी बच्चे का रिश्ता ही क्यों ना करना हो, कोई और काम ना करना हो छोटा बड़ा। अब सवाल यह है कैसे करें, पता नहीं, समझ नहीं आती कि सही फैसले कैसे करें। तो पहली बात है कि शरे सदर ना हो, यानी आपका अपना दिल नहीं सही मुतमईन, तो मशवरा करें। और किससे करना है, जो जीरक हो, समझदार हो और आपका मुखलिस भी हो। फिर उसके बाद सेकंड स्टेप है इस्तखारा, खुद करें, ये नहीं कि बाबा जी से कहें या टीवी पे से इस्तखारे करवाते फिरें। और फिर उसके बाद दिल में पुख्ता इरादा कर लें, और उसके बाद चलिए फैज़ा आज़म तफतवक्कल अल्लाह, फिर मुकम्मल इकदाम करें। ज़िंदगी का सुकून खुशी एक में है। याद रखिए कि जितना तरद्दुद में आप जिएंगे ना, उतना ज़्यादा आपका दिल गैर मुतमईन भी होगा, और उतना ज़्यादा आप अपने आप को परेशान भी करेंगे। फैसले के बाद तरद्दुद रहे, फिर क्या करें। कई लोग कर भी लेते हैं शादी, क्या बच्चा भी हो गया, फिर भी कहते हैं कि वो एक और रिश्ता आया हुआ था, उधर ही अच्छा था। भैया अल्लाह के बाद रिश्ता तोड़ फोड़ भी दिया, नहीं किया, शादी नहीं की, फिर भी उस पर तरद्दुद, तो नुकसान क्या होता है। नंबर एक, फसादे राय, किसी की राय कुछ, किसी की कुछ। फिर इरादे का तजलजल, बार बार इरादे टूटते हैं, कोशिशों का बिखराव होगा, आपने जो थोड़ा बहुत किया होगा वो कोशिशें भी बिखर जाएंगी, और सफ़र की नाकामी। तो अल्लाह से दुआ करते हैं कि हमें डिसाइसिव बना दे। फैज़ा आज़म तफतवक्कल अल्लाह। और जो हदीस कोट की गई बीच में, वो सही मुस्लिम की रिवायत थी, 7043, इब्ने उमर रावी हैं। मुनाफिक की मिसाल उस बकरी की सी है जो मारी मारी फिरती हो दो गल्लों के दरमियान, यानी दो रेवड़ के दरमियान, कभी इस रेवड़ में झुक पड़ती है और कभी उसमें। मुराद ये के फ़ायदों के हरीस सब तरफ से लेने वाले अमूमन कहीं से भी नहीं ले पाते। तो अल्लाह ताला का शुक्र है कि यहाँ पे पूरा हुआ हमारा आज का ये सेशन। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका, अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता, अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।